الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام فار آل اور آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور ایسا ٹاپک ہے کہ دنیا کے ہر شخص سے اس کا تعلق ہے اور چونکہ اسلام ہر شخص کے لیے بہترین رہنمائی ہے تو آج کا ٹاپک آپ ضرور سٹک ٹو مدنی چینل دیکھتے رہیے سمجھتے رہیے اور جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے ظاہری بات ہے اس سے آپ کو سامنا ہے آپ اس کے ساتھ واسطہ ایک رکھتے ہیں تو اپنی باتوں کو مینڈ کرنے کی پہلے سے نیت کر لیجئے دیکھیے جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں تو انوالو ہو کے کریں مائنڈ فل ایکٹیویٹی کریں جیسے بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مائنڈ فل ایکٹیویٹی کریں توجہ پروگرام کی طرف رکھیں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں آپ کھانا کھانے لگے مائنڈ فل ایٹنگ تو سائیکالوجسٹ بیان کرتے ہیں کہ کھانے کے دوران آپ کی پوری توجہ کھانے پہ رہے اور جس وقت آپ پوری توجہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں سنت کے مطابق جب کھانا ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے اندر جاتا ہے باڈی کو سگنل ملتا ہے اور اس کا الگ امپیکٹ ہوتا ہے تو آپ موبائل فون پر رہیں تو موبائل فون پہ رہیں جو کام آپ کر رہے ہیں پوری توجہ اس کو دیں اور اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے تو موبائل فون نہ نکالیں اس کے ساتھ رہیں جس کے ساتھ بیٹھے اس پہ توجہ دیں آپ نے غور کیا ہوگا اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہو یا چل رہے ہو اور آپ اس ملاقات کے دوران موبائل فون نکال لیتے ہیں تو دوسرا بندہ بھی موبائل فون نکال لیتا ہے کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے یہ تو مجھ پہ توجہ دے نہیں رہا میں اس پہ توجہ کیوں دوں گا سو ٹرائی ٹو ڈو تھنگز مائنڈ فلی آپ چینل دیکھ رہے ہیں کوشش کریں ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور یہ پہلے نیت کر لیں کہ جو سنوں گا اس پہ عمل کروں گا کیونکہ باتیں لینڈ کر جائیں اور ایکٹیویٹ نہ ہو تو پھر تو مزہ نہیں آتا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ ٹاپک از فرینڈشپ دوستی کس کو دوست بنایا جائے آج فرینڈ سرکل کتنا امپورٹنٹ ہے آج آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کے ہمسائے ہوں آپ کے کزنز ہوں آپ کے کالج فیلوز ہو یونیورسٹی اور پھر وہ جو بینک دوستوں کا آپ چھوڑا ہے بچپن سے ہر دور میں دوستیاں بنتی چلی گئیں کوئی چھوٹتا رہا کوئی آتا رہا کوئی ایسا جو بھی تک آپ کے فون بک میں ہے آپ کی بزم میں موجود ہے آپ کے خیال میں ہے اس کی باتیں آپ پہ امپیکٹ کرتی ہیں اور پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ دوست سائے اور آئینے کی طرح ہونا چاہیے سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور یہ کہتے ہیں کہ دوست ایسا ہو کہ جب آپ کو مشکل میں دیکھے تو کہے کہ میں اس کا دوست ہوں اور جب آپ کو وہ جیتتے ہوئے دیکھے آپ کو وننگ میں دیکھے تو یہ کہے یہ میرا دوست یعنی آپ پر ناز کرے اور دوستی کی بہت سی باتیں بیان کی گئیں آج کے ہمارے گیسٹ ہوں گے مفتی شفیق صاحب ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کی بہت بڑی ایک رونق ہیں اور ساتھ ہمارے پروگرام دارالافتاء اہل سنت کو ہوسٹ کرتے ہیں بہت سے پروگرامز میں آتے ہیں الحمدللہ اور دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ دارالافتاء یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شرعی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے اس فیلڈ کے امیننٹ اسکالرس یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ آنے والے سائلین کو شرعی رہنمائی فراہم کرتے ہیں کراچی کے دارالافتاء کے ہمارے مفتی صاحب انچارج بھی ہیں وہاں پر بھی تشریف فرما ہوتے ہیں ان کی طرف آتے ہیں اور ان سے ہی بات کرتے ہیں پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں دوست کی کچھ مثالیں کچھ رویے بیان کیے گئے دوست کے نمبر ون تو کہا گیا ہے کہ دوست وہ ہو جو آپ کے صرف حال نہیں پریزنٹ نہیں بلکہ فیوچر کے لیے بھی فائدہ مند ہو وقتی طور پہ دوست تو وہ بن گیا لیکن فیوچر کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہے تو ایسا دوست نہ ہو بلکہ وہ آپ کے فیوچر کے لیے بھی فائدہ مند ہو عام طور پہ کریز ہوتا ہے دوستی کا اور جوانی کے اندر تو دوستی کے پیچھے انسان بالکل اپنا دماغ بھی کھو بیٹھتا ہے یوں سمجھیے یعنی تحقیقات کے مطابق نشے میں پڑنے والے لوگ اور ون ویلنگ جیسی حرکتیں کرنے والے لوگ صرف اور صرف اس لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اپنے دوستوں کو وہ کیسے دکھائیں گے یعنی اپنے دوستوں کے درمیان رہیں گے کیسے اگر یہ کام نہیں کریں گے یعنی دوست وہ بنائیں جو آپ کو مستقبل میں فائدہ دیتا ہو پھر یہ کہا کہ جس کا ساتھ آپ کی صحت بالخصوص نفسیاتی صحت کے لیے اچھا ہو، یعنی اس کی موجودگی آپ کو تازہ کر دے، آپ کو تھکا نہ دے بلکہ آپ کو فریش کر دے اور آپ اس کی موجودگی کے اندر ایک دفعہ ریچارج ہو جائیں۔ پھر یہ کہا کہ دوست وہ جو برے حالات کے اندر آپ سے ملنا کم نہ کرے، نہ ملنا چھوڑ دے، بلکہ آپ کے ساتھ مل کے برے حالات کی پلاننگ کرے، کس طریقے سے ہم نے اس حالات سے باہر نکلنا۔ There is always a light at the end of the tunnel. جتنے مرضی برے حالات آ جائیں، اگر یقین کریں ساتھ والا بہتر ہے نا، بہترین ہو جاتا ہے کام۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ man is known by the company he keeps، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، رستے کی دشواریاں میٹر نہیں کرتی، ساتھ کون ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ ساتھ کوئی ساتھ دینے والا ہو تو دشواریاں آسانیوں میں بدلتی ہیں۔ پھر کہا کہ وہ بندہ دوست ہو جو آپ کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرے، آپ کے اصولوں کے رسپیکٹ کرے، جو آپ کے اصول ہیں زندگی کے اس کو توڑے نا۔ آپ کیا چیز کھاتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اور کیا آپ کی زندگی کی بورڈ، کون سا ٹائم آپ کا پڑھنے کا ہے، اس ٹائم پر وہ آ گیا کہہ رہا ہے چلو جی اٹھو باہر چلو، آپ کا پڑھنے کا ٹائم ہے اور آپ اس ٹائم پہ آؤٹنگ نہیں کرتے، اس کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے نا کہ دس از دا ٹائم فار اسٹڈی، آپ کے اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہ ہونے دے۔ اور ایسا دوست جو جسمانی طور پہ اگر غیر موجود ہے، اس کی غیر موجودگی فیل نہ ہو، وہ ہر وقت ہی ساتھ ہے آپ کے، کیونکہ اس کا آپ کی ذات پہ ایسا اثر ہے، اس کا ایسا امپیکٹ ہے کہ ہر وقت ہی آپ کے ساتھ۔ ریمبر یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ، آپ کا جو نیٹ ورک ہے نا وہ آپ کی دولت ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ مفتی صاحب کچھ کلام میں نے کیا شروع میں دوستی کے حوالے سے، آپ نے کلام سنا، کچھ آپ ارشاد فرمائیے دوستی کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا ہمیں گائیڈ کرتا ہے، واٹ از دا امپورٹینس آف فرینڈ شپ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے ماشاء اللہ تمہیدی گفتگو میں کافی سارے یہ پوائنٹ بیان کیے ہیں، دیکھیں دوست یہ تو ہر آدمی کی طبیعت بھی چاہتی ہے کہ وہ کسی کو دوست بنائے، اور ایک قلبی طور پر ملان رہتا ہے، اور یہ دوستی والے جو معاملات ہیں جس کو بالخصوص ہم دینی بنیاد اگر ہم اس کی ذکر کریں، کیونکہ جب آدمی کسی کا دوست بن جاتا ہے تو اب کہا جاتا ہے نا کہ آدھا یہ خود بول رہا ہے، آدھا کوئی اور اس کے پیچھے بول رہا ہے، اور گھر والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے بولی آ رہی ہے، یہ کیا ڈیمانڈ آ رہی ہے، یہ کیا ڈیمانڈ آئی ہے، کہاں سے یہ آئی ہے، وہ سب کچھ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کی بولی بھی آپ نے وہی بولنی ہے جو دوست والی بولی ہے، اور آپ نے ہر چیز کے اندر اس کو اپنے اوپر ایک طرح کا سوار رکھنا ہے یا سوار کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے دین نے بالکل اس کو واضح کر کے یہ بیان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا، اللہ دوست کے دین پر ہوتا،
very heavy.
فلینظر احدکم من یخالل، تو ہر ایک آدمی یہ دیکھے کہ وہ دوست بنا کس کو رہا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر، ایسے واقعات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جب دعوت اسلام پیش کی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، تو اس وقت ایک شخص نے ایمان جو ہے وہ لے آیا اور سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ اپنے دوستوں میں گیا تو اس کے دوستوں نے اس کو آہر دلائی اور پلان یہ ہوا، یہ کیا، وہ کیا، تو وہ دوبارہ پھر گیا معاذ اللہ، یعنی اسلام سے ہی پھر گیا۔ اتنی بڑی جو توفیق ملی تھی وہ اسلام سے ہی پھر گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ اس دن کیا وہ شخص کہے گا، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، دہر اس کی وجہ سے یہ جو ایمان کی دولت تھی وہ اس سے چلی گئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے کو دوست بناتا ہے کہ جس کے نظر میں دینی طور پر دینی معاملات کی اہمیت نہیں ہے، تو ایک دن یہ دیکھیے گا خود بھی اس کے اوپر یہی اثر چڑھا ہوا۔ آدمی جس صحبت میں رہتا ہے نا اثر آ ہی جاتا ہے، جو بھی ہے، اچھی میں آئے گا تو اچھا اثر آئے گا، برائی میں جائے گا تو برے۔
سب آپ کی بات اتنی زبردست ہے یہ کہ انسان کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، اور یہ نا دوستی کا ایک ایسپیکٹ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک کام ہے کہ ہم مطلب پریچنگ کی ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لوگوں کے مزاج کو بدلیں، لوگوں کے کلچر کو، ان کے سوچنے کے انداز کو بدلیں، پھر وہ چیزیں بدلتی ہیں تو وہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ایکشن بھی پرفارم ہوتا ہے نا، پھر کہ اب اس کی عمل بدلتا ہے۔ اس میں عام طور پہ دیکھا گیا کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا इंसान की ज़िंदगी में चेंज रहना आसान नहीं है। आमतौर पर 40 साल से जो आदतें पड़ी होती हैं ना, 40 साल बाद वही रिपीट हो रही होती है। सोचे पक्की हो गई, माजी के वाक़ात इतने रिपीट होते हैं कि वही सामने नज़र आ रहे होते हैं, मुस्तकबिल के ख्वाब भी वही हैं, यानी नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पर बाकायदा ये तहकीकात हुई कि 40 साल के बाद इंसान अपने आप से वादे करता और तोड़ता है, और जब इंसान ये काम करता है ना कि अपने आप से वादा करके उसे तोड़ा, उसकी शख्सियत का शराधा बिखर जाता है। मिसाल के तौर पर बयान हुआ, बयान में उसने सुना, बयान के अंदर ऐसी तासीर थी कि उसे नीयत की नमाजें पढ़ेगा, अब वो नमाज नहीं पढ़ पाया, या उसने कहा मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा या फरां बुराई को छोड़ दूंगा, और वो ये काम नहीं कर पाया, उसके अंदर से टूट फूट होती है और हर दफ़ा वो टूटता है, और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि अब वो दोबारा से रिपेयर ही नहीं होता। अब वो क्या करता है, अच्छी जगह को भी छोड़ रहा होता है, कब कब हो रहा है। इसके लिए बड़ी प्यारी बात बयान की गई कि आप जो बनना चाहते हैं ना, इतनी कोशिश ना करें आप थक गए और थक जाए, आप ऐसा करें जो बनना चाहते हैं, जो लोग पहले वो काम कर रहे हैं चुप करके उनकी सोबत में बैठ जाएं, चेंज होने का भी आप इरादा ना करें, आप बस सोबत में बैठ जाएं, किसी तरीके से अपने आप को ये मना लें कि मैंने इनके साथ वक्त गुजारना है बस। जब आप वहाँ जाके वक्त गुजारते हैं ना, तो वही वाली आपकी बात कि वो फोटोकॉपी होती है, डिटो कॉपी होती है, और ये तन्हाई की मुलाकातें हैं, यानी ये जारी बात दोस्त का तो बैठ के आपको बयान तो नहीं सुन रहे होते ना, उसके बाद अकेली बातें कर रहे होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है, और रात के अंधेरे में यकीन कर मुसाफ किसी अच्छे दोस्त की कोई बात या किसी अच्छी किताब में लिखी हुई कोई लाइन सीना अंदर घुस के पेनिट्रेट कर जाती। तो सिंपल सी बात मेरे सामने लिखी है कि अगर 4 नमाजी आपके दोस्त होंगे ना, तो इंशाअल्लाह 5वें नमाजी आप होंगे, और अगर 4 दुरूद-ए-सलाम पढ़ने वाले आपके दोस्त होंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़बान से भी दुरूद-ए-सलाम की सदाएँ आएंगी, और अगर 4 शराबी किसी के दोस्त हैं ना, तो वो खुद शराब पिए ना पिए बदनाम तो हो जाएगा ना कि शराबियों के साथ बैठता है।
बिल्कुल, इसको तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इसमें इरशाद फरमाया गया कि बुरे हम नशीनों से बचो, यानी बुरे नाम से भी बचो, कि जो कानों को बुरे लगते हैं, कि जिसके बारे में बंदा सुनकर, तो अपना उठना बैठना अगर नॉर्मल अंदाज भी है, यानी दोस्ती नहीं भी है, लेकिन अगर उनके साथ उठना बैठना होगा तो ये उन्हीं की तरह मनसूब होगा। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको अगर हम दीनदारी के एतबार से देखें ना, एक आलिम है, एक कुछ कारी साहब हैं, मुबल्लिग हैं, कुछ और मनसब है, दीनी मनसब, तो अब इनके तकाजे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, भले इनका वो कोई गहरे ताल्लुक दोस्ती वाला नहीं है या कुछ ऐसा मामला नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुरब्बत के ख़िलाफ़ होती हैं, और ये ऐसों के साथ बैठें उठें कि जो ऐसे कामों में पड़े हुए हैं, तो ये भी बुरा नाम इन पर आएगा। तो बुरे हम नशीन से, ये खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे हमें मना फरमाया, हदीस पाक में वाज़े तौर पर, कि ऐसा कोई भी हम बुरे हम नशीन ना बनाया जाए।
देखें, अब एक बंदा शरीफ है, मन लेगा शरीफ आदमी, वो वापस जाते जाते वो एक बैठक है जहाँ पर कोई बुरा काम हो रहा है, थोड़ी देर के लिए भी खड़ा हो जाता है वहाँ पर बिलफर्ज थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो जिन भी गुजर रहा है वो तो ये कह रहा, देखो कौन खड़े हुए सारे, हालांकि वो बुरा नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन वो सब में आ गया। और इसी तरह की से आप मिसाल लेंगे, मस्जिद के अंदर ढेर सारे लोग बैठ के कोई बयान सुन रहे हैं, तदरीस का कोई दर्स का मौका है, और वहाँ कोई मोहल्ले का बदमाश जाके बैठ जाता है, अब ऐसे ही बैठ गए, अब वो बाहर गुजरेगा कितने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, यानी वो थोड़ी सी संगत भी है उस पर एक चीज़ आ जाती है ना।
लेकिन इसका फ़ायदा देनी भी है ना, अगर बल्कि ये जो बात आपने की है ना, कुछ लोग मस्जिद में बैठे हमारे एक आदमी, वो एक हदीस पाक है ना जिसमें फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, सैर करते हैं
सयाहत के लिए,
सयाहत वाले, और वो जो अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, बंदे जिक्र कर रहे थे, तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे कुछ मांग रहे थे, जन्नत मांग रहे थे, अच्छा किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे, दोज़ख़ से मांग रहे थे, तो अल्लाह उनको गवाह बना के कहता है मैंने सबको बख्श दिया, सबको बख्श दिया। तो फरिश्ते वहाँ यही बात करते हैं, या अल्लाह सारे तो आए थे जिक्र के लिए, एक नहीं आया था, उसके इरादे ही कुछ और था, जाते हुए उसने देखा बैठे हुए, बैठ गया उनके साथ, तो फरमाया इन खुश नसीबों के साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं रहेगा, वो भी खुश नसीब बन गया। तो आदमी ये चीज़ देखें कि जब थोड़ी सी ऐसों की सोबत मिली और उनकी दोस्ती मिली, यानी उनकी मईत मिली, और उस वजह से उस पर इतना करम हो जाता है, तो जो वाकई इनकी दोस्तियों में आ जाए और इन्हीं के साथ ही अपने ऐसे ताल्लुकात वो रखे, तो इंशाल्लाह दीनी तौर पर ये बहुत फायदा मिले,
सीखना भी है और कर्म का तो एक अलग से चैप्टर है, डबल हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी ना, अब दोस्ती के हवाले से ना, बेसिक जो हमें तरगीब बात इरशाद फरमाई ना कि दोस्ती की कुछ मेयार आपने बयान किए, दायरे अपने टाइमिंग के हवाले से, दीगर और चीज़ों के हवाले से, ये तो अपनी जगह, ये भी बिल्कुल एक दोस्त किसको बनाना चाहिए। दूसरी जो हमें दीन इस्लाम ने बुनियाद बताई है ना दोस्ती की, तो उसमें हमें नेकी, तकवा, परहेजगारी ये बहुत ज़्यादा बयान फरमाई गई। फरमाया गया क़यामत वाले दिन, अल अखिल्ला यौम दिन बादुहुम लिबादिन अदू, क़यामत के दिन सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाए, इल्लल मुत्तकीन, मगर जिनकी बुनियाद ही दोस्ती की आपस में नेकी और तकवे परहेज वाली मामलात में थी तो वो दुश्मन नहीं हो, बल्कि वो क़यामत के दिन भी अपनी उस दोस्ती का हक निभाएंगे। यानी अल्लाह उनको वो क़यामत के दिन भी ऐसी माइयत वो अता फरमाएगा कि वो उनकी बख्शिश का
ये साहब कुरान पाक की आयत,
ये कुरान पाक की आयत, क़यामत के दिन वो बाज़ के लिए दुश्मन हो जाएगी। उसकी वजह यही है कि दोस्त दोस्ती में रहकर वो कई तरह की शरीयत मुताहरा की हदें क्रॉस करते हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी कहीं आम जगह पे तो वो कोई भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब दोस्तों के वो जाल में आता है ना तो एक अपनाइत में यूं आता है कि यहाँ का हमारा ऐब ना बाहर जाने वाला है ना कुछ और हमें बाहर से नुकसान, तो उसमें बाज़ का तो ठीक है वो अपने दीन या दुनियावी एतबार से कुछ फ़वाद हों, लेकिन बकसरत ऐसा होता भी है कम इलमी की वजह से कि वो शरीयत की हदें क्रॉस करते हैं। अब जब ये हदें क्रॉस करते हैं, नाफरमानी वाले काम करते हैं, तो ये तो दोस्ती शरण इसकी क्या पजीराई की जाएगी, ये तो पसंदीदा क्या, तो ये तो शरीयत इसको मना करती है ऐसी दोस्तियों से, ऐसे ताल्लुकात से मना करती। तो हमें तकवा की नेकी वाले कामों की ये ऐसे को हम नशीन बनाओ कि जब तुम भूल जाओ वो तुम्हें यादगार
कराए,
वो तुम्हें नसीहत कराए। हम अपने बुजुर्गों के ऐसे वाक़ पढ़ते हैं ना, तो वो किस किस को अपने साथी रखते थे, किसकी रफाकत वो पसंद करते थे, उसमें बेसिक यही होता था कि ये मेरी कोई बुरी चीज़ है तो ये मुझे उसका याद करवाएगा, कहीं मुझे गफलत हुई है तो ये मुझे जगा देगा। तो इसलिए अपनी दोस्ती का मेयार सबसे पहले चेक करें। हमने आज के इस मुआशरे में ऐसे कई लोग देखे कि जो कहते हैं नहीं नहीं मेरा उससे सिर्फ ताल्लुक़ इस हद तक है, लेकिन दीन इस्लाम ने सुभान अल्लाह अल्लाह के अहकामात में इतनी हिकमतें हैं, कुफ्फार के साथ आदमी बिलफर्ज बिजनेस करता है, एक है मुआमलात, आपने ताल्लुकात ऐसे रखे हुए कि आप खरीदो फरोख कर रहे हैं, तो गैर मुस्लिम असली काफिर असली आप उसके साथ खरीदो फरोख कर रहे हैं, कोई मना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इनसे चीज़ें खरीदी भी हैं, बेची भी हैं और कर्ज भी लिया है, यहाँ तक के भी रिवायात है कि वो सबूत मिलते हैं हमें। अब ये तो है एक मुआमलात, फिर इससे आगे ताल्लुक आ जाता है दोस्ती का, जो चीज़ें मवद्दत में तब्दील हो जाती है,
फ्रैंक हो गया थोड़ा सा, बातचीत हो गई, कोई रिश्ता बढ़ गया।
अब ये दोस्ती है ना, तो इसके फिर कुछ और लवाजमत साथ आते हैं कि भाई आज पहले तो था खरीदो फरोख्त, अब होटलिंग भी हो रही है, अब इनके यहाँ कुछ है तो वो आ रहा है और इन उनके यहाँ कुछ है तो ये जा रहा है,
तकरीबात में आना जाना,
तो ये एक गुल मिल गया। अब ये शरीयत को पसंद नहीं, यानी जहाँ जहाँ शरीयत ही हमें हमारी हदें एक बयान कर देती है कि कहाँ आपने सिर्फ मामलात की हद तक रहना है, कहाँ आपने दोस्तियों वाले ताल्लुकात की तरफ बढ़ना है, तो इनमें भी हमें देखना होगा। यानी दोस्त बनाने में सबसे पहले मैं तमाम नाज़रीन से यही कहूँगा, अपनी बुनियाद को ज़रूर देखें कि हम मुसलमान हैं, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, हमने किसी भी ऐसे के साथ दोस्ती वाला मामला नहीं करना कि जिसकी वजह से हमारे दीन में हमें ज़ाती तौर पर कोई नुकसान पहुँचे। अच्छा, पहले के दोस्ती के तस्वुर आज भी दोस्त लोग तो बनाते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया है, अब हर एक दूसरे के पेज को लाइक करेगा, ये भी तो एक दोस्ती का ताल्लुक है ना, एक ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। यानी जिसकी बातें आप पर असर करें, जिसकी आप चीज़ें सुनते हैं, आप देखते हैं, तो ये सब चीज़ें उस पर हैं। अब अगर आपने ऐसो से ही ये मामला किए कि जिनकी वजह से आपको दीन ही नुकसान पहुँच रहा है, कहाँ आपको शरीयत इजाज़त देगी, हरगिज़ बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होगी। रिवायत में यहाँ तक फरमाया गया कि ये दीन का इल्म भी है, फन ज़रू अमन ताखुजून दीनकुम, तुम दीन किससे लोगे ये भी देखो, दीन किससे लोगे कि वो जिसकी तुम बातें सुनने की आदि हो रहे हो सकता है वो क्या से क्या मिलाकर तुम्हें गोलगल बिरा दे और तुम अपने दीन के अंदर भी बसाविस में पड़ जाए। वो हमारे थे ना एक बुजुर्ग ताबी बुजुर्ग थे, इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह तआला, बड़े आलिम थे, ताबी बुजुर्ग थे, तो किसी ने उनसे कहा ना कि दो बंदे आए हमसे कुरान की एक आयत सुन लें, कुरान की हम बात करना चाहते हैं, तो आपने फरमाया मैंने तुमसे नहीं सुनी, अच्छा, वो चले गए तो आपके मुरीदों ने कहा, हजरत जी वो तो कुरान कह रहे थे, आप सुन लेते। पर मैं तुम नहीं जानते कि इनका ताल्लुक उससे हो चुका है कि जो तकदीर का इनकार करते हैं। तो तकदीर के इनकार करने वाले से मैं कुरान क्यों सुनूं? क्योंकि उसके जब अकीदे में एक खलल वाक़े हो चुका है तो अब वो नाम कुरान का लेगा लेकिन मुझे पिला कुछ और जाए। अच्छा, वो बहुत बड़े आलिम थे, उन पर कोई असर नहीं हो सकता। कोई आलिम किसी की ऐसे सुनेगा तो ऐसे थोड़ी असर, उनको दलील बताए। लेकिन उन्होंने मेरे और आप जैसों के लिए ये तालीम फरमा दी है, ये तरबियत फरमा दी है कि हमने ऐसों के साथ ना तो ऐसा कोई ताल्लुक रखना, ना उसकी कोई बात सुननी।
जी वैसे आपने जो बात की ना, अभी मैं इसमें ऐड करूँगा कि देखिए, एक चीज़ होती है चीनी, एक चीज़ है जहर। अगर चीनी डाल देंगे चाय में तो ठीक है, पियेंगे, मज़ेदार लगेगी, और अगर जहर डाल देंगे तो बंदा मर जाएगा। अब ये नॉर्मल है, इस दुनिया में चीनी भी है, जहर भी है, यानी चीनी से मुराद अच्छी चीज़ें भी है, जहर से मुराद बुरी चीज़ें भी हैं। अब मसला ये है कि अगर चीनी वो दुश्मन डाल रहा है कुछ नहीं होगा, और अगर जहर दोस्त डाल देगा मतलब फिर मर जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डाल रहा है उसे ना देखें, जो चीज़ डाल रही है वो देखने वाली,
वो देखें। और सबसे खतरा ये है कि जो आपको शो चीनी कर रहा है डाल जहर रहा है,
जहर सबसे बड़ा खतरा ये,
खतरा ये।
और इट मीन दैट यू नीड टू स्टैंड गार्ड ऑन योर ब्रेन। आपको अपने दिमाग पे पहरेदार बन के बैठना है कि कौन गुजर रहा है। कभी कभार दोस्त भी बहुत बड़ा जहर डाल के जा सकता है ना, जैसे आपने फरमाया कि ऊपर से मुस्कुरा रहा है और नीचे उसे छुरी रखी हुई है। अब ये इसके तकाजे होते हैं, इसके कुछ बातें होती हैं कि मिसाल के तौर पे आपके साथ जब तक वो दोस्त था तब तक तो आपने उसे शेयरिंग की ना, सारी बात है, आपने शेयर करने के लिए कोई बंदा तो चाहिए। एक रिसर्च मैंने पढ़ी, उसके अंदर लिखा था कि इंसान ने शेयरिंग करनी ही करनी है, अपने हालात बताने ही बताने हैं, शेयर करना ही करना है। अब पहले जितने 10 से 12 लोग किसी की ज़िंदगी में होते थे जिनके साथ अपने मामला शेयर करता था, अब सोशल मीडिया के आने के बाद एतबार उठ गया है, ये 2 रह गए सिर्फ, बाकी 10 कौन खा गया? सोशल मीडिया खा गया, उस पर फ्रेंडशिप जो हो रही है सारा कुछ हो रहा है, जबकि वह ना पता है कि जो फ्रेंड बना रहे हैं उसकी जेंडर का भी नहीं पता कि वो मर्द है कि औरत, जो भी प्रेडिक्ट कर रहा है, जो नज़र आ रहा है वो है भी कि नहीं वो नहीं पता। और उसके बाद वन साइडेड किस्म का रिलेशन है जिसमें टेंशन ज़्यादा है, यानी फ्रेंड सर्कल आपका वर्चुअल बन गया। वर्चुअल से मुराद उन लोगों से हम मिले नहीं हुए लेकिन आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी फीड को देख रहे हैं, आपकी तबीयत पे उसका असर हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बात बड़ी वो कहा जाती है कि अगर चूहे को ये पता होता कि चूहे दानी पे जो रोटी या पनीर लगा हुआ है वो फ्री नहीं है तो वो कभी ना मरता। उसने समझा कि वो फ्री है और वो गया और उसको पकड़ा गया। फ्री कोई चीज़ नहीं होती। अब जिसके बाद आपने सोशल मीडिया को साइन इन किया आप समझे फ्री है, लेकिन जब आपने अपनी नज़रें उठाई तो आप उसके कैदी बन चुके हुए थे। अब उसके बगैर चारा नहीं है, पूरी पूरी नौजवान नस्ल उसके ऊपर बैठी हुई है, नज़रें झुकी हुई हैं, सामने अबू बैठा है, टीचर बैठा है, दोस्त बैठा है, नज़र नहीं आ रहा। यानी आपके करीब बैठा हुआ बंदा आपसे सैकड़ों मील दूर है, जबकि वो बंदा जो आपके मुल्क का भी नहीं है, पता नहीं कौन है, वो आपके बहुत करीब हुआ हुआ है। भैया मुझ सब एक चीज़ है कि ना, फ्रेंडशिप के अंदर मेयार जो है ना इस वक्त, वो एक स्टूडेंट के लिए मेयार ये है कि जी इसके पास नोट्स सही हैं, नोट्स अच्छे हैं तो मैं इसको दोस्त बना लूँ, या एक बहुत बड़ा मेयार वो दौलत है कि इसके पास पैसे हैं तो इसके साथ दोस्ती की जाए और उस बंदे के दोस्त भी ज़्यादा हैं और वो उस फ्रेंड सर्कल में मोनोपोली भी उसकी है, उसकी सुनी जा रही है, वो हरकतें जो भी करवा रहा है, जिस डेरे पर लेके जा रहा है, जो भी बैठ के मशगूलियत है वो चल रही है। अब मेयार जो है कि एट द कोर क्या होनी चाहिए, कि मेयार क्या रखा जाए, बहुत सी रवायात में हदीस में आता है कि रजा हो दुश्मनी हो, यानी किस वजह से हम किसी को दोस्त बनाए।
देखें, जो बेसिक चीज़ है ना, एक तो होता है कि कोई किसी से ताल्लुक़ अपना बढ़ाता है दुनियावी किसी फ़ायदे की वजह से। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि किसी के पास अच्छे नोट्स तैयार हुए हैं, हमसे ताल्लुक है, इस पर कोई इतनी वो गहरी दोस्ती वाला मामला नहीं है कि किसी ने एक तालीमी को ये ताल्लुक़ रखा है और अपनी नोट्स वगैरह रखे हैं, उनसे पढ़ा, अपने एग्ज़ाम दिए, पेपर दिए, और ये ताल्लुक़ यहाँ तक ही रहता है, इससे कुछ नहीं। दूसरे जो एक गहरे ताल्लुक होते हैं ना, उनकी फिर वजह तलाश करनी चाहिए कि वो किस वजह से है। अगर तो माल की मोहब्बत की वजह से है तो ये दोस्ती अच्छी नहीं है। अगर किसी और चीज़ का कोई तमा लालच उसके साथ अटैच हुआ है तो भी ये दोस्ती अच्छी नहीं, क्योंकि जब आदमी किसी का माल खाता है ना फिर उसकी नज़रें झुकती हैं, फिर जब निगाह और नज़र उसकी झुकेगी और जो कुछ उसने कहना है ये मानेगा, और वो करवा लेगा ऐसे तो ही, तो हमारा ये मियार ही नहीं है। हमें तो ये तालीम दी गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान वाज़े तौर पर आए कि आप किसी से अगर दोस्ती का कोई ताल्लुक है भी तो वो अल्लाह की रजा के लिए, कि ये एक मुसलमान भाई है मेरा इसके साथ ताल्लुक बढ़ रहा है। हाँ, मेरा इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, अगर वो सामने वाला ऐसा है कि आपको अकायद में मजबूती है, आमाल में मजबूती है, दीन इस्लाम पर इस्तिकामत मिल रही है उसकी वजह से, अभी आप बहुत अच्छी, और ये भी मोहब्बत इलाही और रज़ा इलाही के लिए ये दोस्ती कहलाएगी। ये कोई अपना ज़ाती ऐसा नफ़ा नहीं है, तो नफ़ा ही है लेकिन ज़ाती वो नहीं है कि जिसमें कोई दुनियावी तौर पर कोई ऐसा नहीं। दीनी लालच है, दीनी तमा होना चाहिए, दीनी लालच जहाँ भी हो, जिसकी सोहबत या जिसकी दोस्ती की वजह से आपके दीनी तौर पर मियार अच्छे होते हैं और आपको फ़ायदा मिलता है, उसकी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, उसकी दोस्ती रखनी चाहिए। तो हमें मियार ये दिया कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे, फरमाया गया कि जिन पर नबी भी रश करेंगे, हालांकि वो नबी नहीं होंगे, वो आने वाले नबी नहीं होंगे, शहीद भी रश करेंगे, बड़े बड़े लोग उन पर रश करेंगे कि यार इनके इतने बड़े मकाम, क्योंकि वो ऐसे मिंबरों पर होंगे। तो पूछा जाएगा कि वो कौन है, वो नबी है नहीं, नबी नहीं है, शहीद है नहीं, शहीद नहीं, लेकिन सारे रश करेंगे। क्यों? कहा कि उनका आपस का ताल्लुक ही सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए था, अल्लाह की रजा के लिए उनका ताल्लुक है। हमने हदीसों में क्या नहीं पढ़ा कि कहीं देना है तो भी रजा इलाही के लिए दें, कहीं मना करना है तो भी अल्लाह की रजा के लिए। जी हाँ, मना आता ये सब इसमें ये चीज़ें हमें रखनी चाहिए।
दोस्ती और दुश्मनी दोनों अल्लाह की रजा,
दोनों के दोनों, कहीं से हमारी दुश्मनी है तो वो भी वहाँ पे भी अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। तो ये मियार हमें बेसिक रखना होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब साहबा ने पूछा ना कि एक साहबी ने सवाल किया क़यामत कब आनी, फरमाया तेरी तैयारी क्या है, तो कसरत से कोई नमाजें नहीं है, रोज़े नहीं है, ऐसे मेरे पास तो कुछ नहीं कसरत से, लेकिन ये है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो हमने कितना खूबसूरत फरमाया, जिससे प्यार करता होगा उसी के साथ उठाया जाएगा। हज़रत अनस फरमाते हैं, कहते हैं कि हमें इतनी खुशी मिली इस फरमान पर, क्योंकि हमारी मोहब्बतों का मरकज़ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की था। और लेकिन आगे भी आपने एक बात जो फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक जैसे मेरे अमल नहीं है, उमर फारूक जैसे नहीं है, लेकिन इनसे मेरी मोहब्बत है, ये मोहब्बत ही मुझे क़यामत के दिन इनके साथ उठाएगी। जो दोस्ती के नाम पे हमारी मोहब्बतें कहीं और चली जाती हैं, इन मोहब्बतों का क़िबला दुरुस्त करें। ये प्यारे नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, आपके अहले बैत अतहार, और ऐसे लोगों से ये मोहब्बत हो कि जो आपका ये दीनी तौर पर ताल्लुक मजबूत कर।
यानी बड़ी प्यारी बात यहाँ पर एक जो मैंने आपसे सहस की वो ये कि हमारे फ्रेंड्स की अगर लिस्ट देखी जाए, फ्रेंड सर्कल की पूरी लिस्ट बनी होती है, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आए हुए हैं, फेसबुक पर भी ग्रुप बने होते हैं, और हर जगह के ऊपर फ्रेंड्स की कसरत है। यानी ये सारे दोस्त मदनी चैनल के नाज़रीन वो हैं जो कब्र तक हमारे साथ हैं। कोई तो ऐसा दोस्त बना लें जो कब्र के अंदर भी हमारे साथ आ जाए। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि उतर के तो कोई नहीं आएगा, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ हो जिसको हमने दुनिया में मोहब्बत की हो कि वो कब्र में हमारा साथ दे, जहाँ पे सकी माँ एक दिया भी नहीं रखेगी, ना कफन में कोई जेब होगी, ना वहाँ पर कोई आसाइश के सामान होंगे, ना वो वार्डरोब होगी, ना वहाँ पर गाड़ी का गैराज होगा, बल्कि वहाँ पर यही चीज़ें हमें चाहिए होंगी कि उस अंधेरी कब्र में रोशनी हो। और कुरान मजीद के साथ अगर हमने दोस्ती की होगी, कुरान मजीद को पढ़ा होगा, कुरान मजीद के अहकाम पर अमल किया होगा, कुरान मजीद के साथ बॉन्ड हमारा मजबूत होगा, तो कई रवायात आती हैं, सूरह मुल्क शरीफ जो है वो कब्र के अजाब से बचाने वाली सूरत है, और इसी तरीके से सुन्नतों से मोहब्बत करेंगे तो ये सुन्नत का चराग कब्र में रोशनी का सबब बनेगा। और ऐसे दोस्त अगर हम रखेंगे जो कि हमारे जाने के बाद इसाले सवाब करने वाले होंगे, और वो हमारे जाने के बाद हमें भूलेंगे नहीं, तो जारी बात है उनकी दोस्ती कब्र में भी हमें काम आएगी। कहा जाता है ना कि ये जो के दोस्त है ये क्या जाने के बाद क्या याद करेगा, हमारी दोस्ती की क्या चीज़ याद आएगी। और आमतौर पर सब एक इंसान जो फौत हो जाता है, हो सकता है वो ये सोच रहा है कि जी मेरे बच्चे मेरे लिए साले सवाब करेंगे, यानी वो बच्चे जो उसके कहने पर नमाजें नहीं पढ़ रहे वो साले सवाब करेंगे, वो रिश्तेदार साले सवाब करेंगे जिन पर वासर लगा के बैठा है, जिनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, और वो बहन भाई साले सवाब करेंगे जो ईदों में मिलते हैं अब हर एक बंदा अपने बखेड़ों में, और जनाब वो दोस्त साले सवाब करेंगे जो सुन्नत रखता है उसको देखते हैं ना तो वो मजाक उड़ाते हैं, ऐसों से उम्मीदें रख रहा है वो। अल्लाह करे वो बात हो जाए और बाद में जाए, खुद से मेरा ख्याल है सेट सूट कर देना चाहिए।
मुझे एक बात याद आई आपके बात करने पर, वाकई एक शख्स मेरे पास आया, उसने बताया कि मेरे पास ये कुछ है ये है वो है। तो हमें शरीयत जो एक वसीयत का एक तसव्वुर देती है वो क्या है, मैंने बताया कि भाई शरीयत आपको अपने माल में 1/3 के अंदर इख्तियार देती है, आप वसीयत करो और अच्छी बात है, नेकी के कामों में वसीयत, आप नेक कामों में खर्च करने की वसीयत, कहते ही 1/3 तो ज़्यादा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको शरीयत की तरफ से इख्तियार है कि इतनी लिमिट आप कर सकते हो, आप कोई 10वां हिस्सा ले लें, 10% कर लें आप, ठीक है। कह रही ये ठीक है, मैं मतलब बिल्कुल मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो मैं उसका 10वां बिल मैं कर जाता हूँ, वसीयत कर देता हूँ। मैंने एक बात की, मैंने कहा मुझे ये बताएं हाजी साहब, आप खुद क्यों नहीं कर देते ये खर्च अपने सामने, अभी आपके माल है आपकी अपनी पास ये, खुद खर्च करो अपने लिए, देखो इसको अपनी आंखें ठंडी करो कि मैंने ये काम कर लिया। बोले नहीं मैं वसीयत कर जाता हूँ ये वो, मेरे को एक बात के लिए क्योंकि मैंने बोल दी उनको, मैंने कहा देखें आपका कमाया हुआ माल आपके हाथ में, अभी आप में हिम्मत नहीं है ये निकाल दें, इतना मैं निकाल दूँ तो आप क्या उम्मीद रखते हैं बाद में वो निकाल देंगे जिनके पास आ जाएगा और फिर टुकड़े हिस्से होकर उनके पास आएगा, तो क्या आप क्या उम्मीद रखें। यानी एक चोट करने के लिए कहा, अगर कोई वसीयत कर भी जाता है जाहिर है कि वर्षा पर लाजिम होगा, वसीयत के आकाम तो ऐसे हैं कि जिसके ऊपर आपने सबसे पहले जो अगर मैयत पे अगर कर्जे हैं, मैयत के अपने कफन दफन के खराजात हैं और कर्जे हैं, उसके बाद विरासत से पहले वसीयत, वसीयत अगर है तो वो वसीयत को पहले निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बांट लें और वसीयत भूल जाए किसी की। तो ये चोट करने के लिए मैंने उनको ऐसे ही कहा कि यार आपने अपना ही कमाया हुआ है तो अपने हाथों से लगा के जाएं ताकि आप ज़िंदगी में देख भी सकें कि मैंने अच्छा। उनका वो जो 10% था ना, जो इतना एक शेयर था, तो उसमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो सकता था, ऐसा नहीं है कि वो कोई नॉर्मल हो जानी थी बात, उसमें वो बहुत कुछ खड़ा कर सकते थे और किया भी होगा, देते भी होंगे अल्लाह की राह में। लेकिन मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ ऐसी चीज़ें कि जो हमें उम्मीद है ना कि हमारे बाद ये कर देगा, हमारे बाद ये कर देगा, अरे भाई आपको ज़िंदगी में रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको बाद में सर क्या आपने रिजल्ट मिलना है, तो सिर्फ फेसबुक के दोस्तों पे दोबारा
अपनी सेटिंग्स कर।
एक पोस्ट पढ़ी थी मैंने कहीं, कहा कि जब आदमी का 35-40 हज़ार फ्रेंड बने हुए हैं और जब बीमार होता है तो हॉस्पिटल के बाहर जो है ना वो इसका कोई भाई खड़ा है, बहन खड़ी है, बीवी खड़ी है, बस ये 4-5 हैं, 35 हज़ार में से ये 5 हैं, ये 35 हज़ार के लिए इन सारे रिश्तों को इसने बुला दिया था और सब कुछ कर दिया, और आज वो 35 हज़ार पता नहीं कहाँ गए हुए हैं और ये 5 ही हैं इसकी 4 भाई के पास।
मतलब जाहिर की चमक पे जाना नहीं चाहिए। वैसे कहते हैं कि भाई से बेहतर वाकई कोई दोस्त नहीं है, माँ बाप से बेहतर। देखे ना वाकई एक बात है कि जब आप यूनिवर्सिटी में गए तो आपका जो यूनिवर्सिटी वाला पहलू था, आपकी जो शख्सियत थी, यूनिवर्सिटी के दोस्त तो उसी शख्सियत को जानते हैं। जब आप कॉलेज में थे तो वो जो कॉलेज वाला आपका रूप था, कॉलेज वाले उसी को जानते हैं, उनको पहले स्कूल वाले रूप का नहीं पता। जब आप स्कूल में थे कॉन्फिडेंट थे, शाय थे, शर्मीले थे, बहुत ज़्यादा थीटे थे, थीटे कहते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, वो स्कूल वालों को पता। यानी आपकी ज़िंदगी का हर दौर का उसी बंदे को पता है जिसके सामने वो दौर आया। अब ये जो आपकी बहन है, भाई है, अम्मी है, वो ये तो आपके पूरे जिंदगी को जानते हैं, वो स्कूल वाले को भी जानते हैं, कॉलेज वाले को भी जानते हैं, यूनिवर्सिटी वाले को भी जानते हैं,
और तालीम के अलावा टाइम भी जानते हैं,
वो भी जानते हैं कि इसका क्या रवैया है। अब इसीलिए कोई आगे हमसे कहता ना कि जी अब बताएं मैं कारोबार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, हम उसे कहते हैं माँ से पूछो, कहते जी माँ तो नहीं पढ़ी लिखी, हमने कहा आपके लिए बहुत पढ़ी लिखी है वो, आपके एंगल को ना कि अब यही पूछा जा रहा है, रिस्क ले सकते कि नहीं सकते। मैं तो आपके चेहरे को देख के कह दूंगा आप ले सकते नहीं ले सकते, माँ को तो वाकई पता है कि इस पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है कि नहीं। हर बंदा कारोबार तो नहीं बढ़ सकता ना, एक बंदा जो स्टार्टिंग कैरियर है, मैं अंडी चैनल के नाजरी से भी अर्ज करूंगा कि कैरियर का स्टार्ट आपने जो लिया वही रहता है, कारोबार से लिया आपने, अब आप नौकरी नहीं करेंगे, अगर नौकरी से ले लिया तो कुछ अर्से बाद कारोबार करने का हौसला नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कि क्या स्टार्ट पे आपने कैरियर स्टार्ट लिया। आमतौर पे कहते हैं कि 35% कारोबार करने की जो सलाहियत है वो माँ बाप की तरफ से आती है बंदे को, 35%, बाकी वो खुद पैदा कर सकता है अगर वो सीखता है, ऐसे लोगों के साथ बैठता है फिर करता है। तो बहरहाल ये जो दोस्ती के हवाले से है, अगर तो आप किसी के दोस्त हैं और दोस्ती के दौरान फिर दोस्ती छूट जाती है किसी वजह से, तो सबसे पहला काम तो राजों की तदफीन का है कि जो जो कुछ आपने सुना देखा बात की, अब ये ना हो कि अगले चौक पे जाके वो तमाशा बनाओ, सारी की सारी बातें निकल जाएं जो राज समझ के आपके पास रखाई गई थी, जो किया गया था। इस हवाले से मुझसे आप क्या आप गाइड करेंगे, ये जो बातें आपस में दोस्त करते हैं या जो ऐसे राज की बात है, मैंने तो कह दी ये सोच के कि ये दोस्त था तो ये बात मैं इसी को कह सकता हूँ और किसको कहूँगा, लेकिन उसने वो दोस्ती का भरम नहीं रखा और फिर वो इज्जत का जो है ना वो चिकना चूर हो जाती है बात।
देखें, जो भी ताल्लुकात हो उनमें इन चीज़ों का तो ज़रूर ख्याल शुरू से ही रखना चाहिए, दोस्तों को भी रखना चाहिए। हर चीज़ बिल्कुल खोल खोल कर बयान करने की क्या ज़रूरत है। कहते ना, जब आपने किसी और को कह दी कि भाई इसको आगे नहीं करना, या दोस्त को ना भी कहा, दोस्त के साथ एक तय होता है एक तरह का कि भाई ये आगे नहीं करेंगे मेरी इसके, लेकिन अब वो बात आपकी नहीं रही, वो कहीं ना कहीं से अगर आज नहीं है तो दोस्ती टूटने के बाद भी वो बात मामला सामने है। एक हदीस पाक है जिसमें ये बात इरशाद फरमाई कि जब किसी से मोहब्बत करो तो फिर इतनी हद तक मोहब्बत ना करो, यानी दोस्ती का यहाँ बयान किया है, तो इतनी ना करो कि उसके बगैर ना रह सको। नफरत करो तो फिर इतनी नफरत ना हो कि कल को अगर वो दोस्त बन जाए तो फिर तुम्हें कुछ मसायल, यानी पूरा एक रिवायत का मफहूम है कि कहीं नफरत भी है तो उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए ना, कि इतनी नहीं कि कल को अगर वाकई दोस्ती के अंदर या कोई बातचीत होती है, बात होता है ना, लोग लड़ाई करते हैं तो उसके अंदर हदें क्रॉस कर जाते हैं, जैसे इसने आज के बाद इसको देखना ही नहीं है, हालांकि इनको पता है ना इसने घर छोड़ के जाना है, मियाँ बीवी की बात करें या किसी और की, कि इतनी हद क्रॉस ना करो कि बाद में सुलह होने के बाद भी निगाहें झुकी रहें, शर्मिंदगी हो कि मैंने क्या बोल दिया, इतना कुछ आगे पहुंचा दिया, तो इनमें एक लिमिट रखनी चाहिए। बहरहाल जो भी कोई दोस्त हैं जिसके दोस्ती के मामलात आपस में टूट गए, बातचीत ख़त्म हो गई, तो अब एक नए गुनाहों का दरवाज़ा वो नहीं खुलना चाहिए कि अब गिबतें हों, अब उसके अंदर तरह तरह के अयूब हों। जब दोस्ती थी तो सब कुछ बर्दाश्त भी हो रहा था, सब कुछ कर रहे थे, अब आप उसके ऐब खोल रहे हैं, तो शरीयत मुतारा में बगैर किसी शरी वजह के किसी के ऐब खोलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। आपका ताल्लुक नहीं रहा तो मैं कहता हूँ दोस्ती का एक हक ये है कि दोस्ती टूटने के बाद भी आपकी ऐसी चीज़ें बाहर ना है, ये तो हक आपसे मुतालिक ही रहेंगे। अवलन कोशिश यही हो कि जिनके साथ दोस्ती हैं, लोग कहते हैं कि अपने दोस्त भले कम बनाओ, दुश्मन किसी को ना बनाओ, दुश्मन एक भी ना बनाओ, क्योंकि एक भी आपका दुश्मन बन गया ना, जो वो आपके खिलाफ और मनफी काम करेगा, आपके 100 दोस्त भी मिलकर उसका कोई इजाला नहीं कर पाएंगे, तो अत्तर इम्कान ये
कोशिश करें कि वो दुश्मनी की हद पे उसको लेके ही ना जाए। इतना आमतौर पर मतलब दोस्त को आजमाना भी नहीं ज़्यादा चाहिए, लोग ऐसे करते हैं कि दोस्त है मेरा तो आजमा रहे होते हैं। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो सबके अंदर है, नेगेटिव उसके अंदर भी है, बर्दाश्त का पहलू आप उसका देख रहे हैं। अब देखिए, हर इंसान का अंदर एक मनफी चीज़ तो मौजूद है, शर का पहलू तो है, अब अगर उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे कि उसका वो शर वाला पहलू नुमाया हो, वो मतलब उसको इतना आजमा रहे कि वो गलती करे, मैं तब तक आजमाता रहूँगा जब तक गलती देख नहीं लूँगा,
इसको आजमाइश से पूरा गुजारना है,
पूरा गुजार। अब देखिए, वो कहीं ना कहीं तो फिसलेगा ना, और जहाँ वो फिसला उस जगह के ऊपर आपने कहा जी ये देखो ये फिसल गया, तो आप अपनी भी तो हरकतें देखें ना, किस जगह तक आप लेकर आए उसको,
क्यों इतना आजमा रहे,
क्यों इतना आजमा रहे।
ये जो दोस्तियों में जो ताल्लुकात ख़राब होते हैं ना, उसकी एक बुनियादी वजह यही होती है, खाम खा के ऐसे ये बनाकर। मेरे पास एक शख्स आया, अच्छा मुझे, मैं जानता हूँ किसी और का दोस्त था, मैंने कहा भी आप वो अच्छा खासा आपका दोस्त था सब कुछ है, लेकिन उन्होंने हमारे अब ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, कोई खिलाफ बात भी नहीं की, क्यों खैरियत क्या हुआ, पहले तो नहीं बता रहे थे, फिर बताया उन्होंने कि एक मरतबा मैं कहीं दावत में था, मेरी कहीं और दावत थी कहीं और किसी जगह, तो इसने अचानक ऐसा है कि फ़ोन करा दिया कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी और से फ़ोन कराया मुझे, इसका एक्सीडेंट हो, मैं अपनी फैमिली या जहाँ भी था मैं वहाँ से भागा, ठीक है, एक हॉस्पिटल में गए जिस हॉस्पिटल का मुझे कहा, अच्छा खासा उसको पता था कि मैंने एक दावत में जाना है, चल दावत से उठाया उस हॉस्पिटल में गया। जब वहां पहुंचे क्या हालत होगी, कैसे पहुंचे वहां, उसने जब रब्ता किया, अच्छा उसका तो नंबर बंद था जिस जो उसके साथ खेल लेते मिल गया, तो एक और हॉस्पिटल का बता दिया कि हम यहाँ इमरजेंसी में, यहाँ ये वो उस कैफे में, यहाँ तक कि उसको रात के 3 बजे तक इन्होंने घुमाया, 3 बजे तक घुमाया और कह रहे हैं हम तुम्हें आजमा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, कुछ ही नहीं हुआ। अरे भाई किसी को इस हद तक तो तुम आजमा रहे हो और ये इस तरह कर रहे हो उसके साथ, ये कौन सा दोस्ती चेक करने का मैार है यार। हमें तो ये भी बयान किया गया कि जहाँ अपने ताल्लुकात दोस्ती ख़राब करनी, तो छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से सामने वालों को तकलीफ पहुँचे, आम मुसलमान को तकलीफ पहुँचाने कि हमारे दीन इजाज़त नहीं देता, तो यहाँ के कर्जे का लेन देन भी दोस्तों से नहीं करना चाहिए। अगर आप दोस्ती का एक ताल्लुक है, रिश्ता है, तो इसके अंदर पैसा क्यों बीच में ला रहे हो, क्यों आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ये नहीं कर रहे, मेरे साथ ये नहीं कर। भाई वो अगर अमीर है तो वो पैसा उसका अपने पर। हमें तो हदीस रसूल में ये तालीम दी है कि तुम लोगों के माल से अपने आप को मुस्तगनी रखो। जो बंदा लोगों की तरफ इस तरह की नज़र रखता है ना, वो कभी खुद गनी नहीं हो सकता, लेकिन वो जो कल्बी एक रुझान और कल्बी सुकून है वो उसको हासिल नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों में कि जिनकी वजह से हमारी दोस्ती के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, बेजा किसी को ऐसा आजमाना, किसी को पर ऐसी आजमाइश डाल देना, चाहे वो कर्जे की मद में हो, चाहे वो किसी और तरह की, और फिर उसको बदनाम भी करना, कहें यार ये अच्छा दोस्त है यार, मैंने इससे इतने पैसे मांगे थे, इसने पैसे नहीं दिए, दोस्ती का ये मैार ही नहीं है, ये अंदाज भी नहीं है। अगरचे कोई अगर परेशानी में आते तो हम यही कहेंगे दोस्तों को, कौन नहीं के दोस्तों को कहेंगे, रिश्तेदारों को कहेंगे कि हमारे तो दीन ने हमें कहा है कि अपनी करीबी लोगों को सबसे पहले आप देखो, जब आप सदका देना भी चाहो तो आप चीज़ें देखो, ज़कात देना चाहो तो देखो, ठीक है ये अपने तौर पर, लेकिन इधर वालों को यही कहेंगे कि ये उम्मीदें लगा।
मदीस के नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा आपसे कि अक्लमंद लोगों को दोस्त बनाएं और वाइज पीपल अपनी कंपनी में रखें। अक्लमंद कौन है, कौन ऐसा है जो अक्लमंद है, पुख्ता इरादे वाला है? हो सकता कोई ये सोचे कि जनाब अक्लमंद वो कारोबारी आदमी है जिसने एक दुकान से शुरू किया था, आज उसकी 10 ब्रांचेज हैं और पूरे मुल्क के अंदर उसकी ब्रांचेज हैं, उसने एक जॉब शुरू की थी, आज वो हायरार्की पे चढ़ते चढ़ते बड़े ऊंचे रैंक पर पहुंच गया, उसकी प्रमोशन हो गई, उसकी सैलरी बढ़ गई है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, सबसे ज़्यादा अक्लमंद और पुख्ता इरादे वाला कौन है? फरमाया वो शख्स जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करता है और मौत की तैयारी के मामले में सबसे ज़्यादा सख्त है, यही लोग सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं और दुनिया और आखिरत में सआदत पा गए। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट अपनी, इसको रिव्यू करते रहा करें, ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारा फिल्टर ही वो नहीं है, हम देखते ही नहीं है, सोच ही वो नहीं है, तो ऐसे लोग हमें हो सकता है नज़र न आ रहे हो। ऐसे दोस्त ज़रूर बनाएं जिनको आप देखें तो आपको अल्लाह याद आ जाए, यानी आप उनको देखें तो उनकी सोहबत या उनका आना आपको याद दिलाए कि यार फला फला अहम काम में नहीं कर रहा और फला फला गंदे कामों में मैं पड़ा हुआ हूँ, और उनकी सोहबत, उनका आना, उनका देखना, उनके आपके मोबाइल फ़ोन में मौजूदगी, उनकी आपकी ज़िंदगी में मौजूदगी आपको बेरगबती से दूर करे और आपको दुनिया से दूर करते हुए दीन की तरफ लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें यही सिखाता और समझाता है, और अच्छी कंपनी के बहुत से मौके हैं दावत इस्लामी के अंदर। आप दावत इस्लामी के मदनी काफिले में सफ़र करें, 3 दिन कम अज़ कम किसी के साथ गुजारेंगे तो दोस्ती हो ही जाती है। आप जुमेरात इज्तिमा में हर जुमेरात को शिरकत फरमाए इज्तिमा में, तो वहाँ 3-4 घंटे गुजर रहे हैं, वहाँ पर आप किसी से मुलाकात करते हैं, किसी का अंदाज़ अच्छा लगता है, किसी की मुस्कुराहट आप अपनाइत वाली लगती है। और आज के इस टेंशन ज़्यादा दौर में एक ऐसी जगह होती है हफ्तावार इज्तिमा, जहाँ पर दूर नज़दीक से लोग किसी दुनियावी घर से नहीं आए होते, बल्कि वो इसी मकसद से आए होते हैं कि हम यहाँ पर अल्लाह की इबादत करेंगे, मिलकर दुआ मांगेंगे, वहाँ सलातुस्सलाम बड़ा अच्छा पढ़ा जाता है, ये आइडियाज़ होते हैं। तो आइए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से अवस्था हो जाइए, बड़ी अच्छी दोस्ती आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। अपनी दोस्तियों को बेहतर करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आपसे पूछते रहे यार 5 साल बाद मैं क्या होऊंगा, बड़ा आसान सा काम, अपने दोस्त दिखा दें, हम आपको बता दें कि 5 साल बाद आप क्या होंगे, यानी जो दोस्त है वही आप बनते चले जाएंगे, वही आपकी शनाख्त बन जाएगा। मदनी चैनल देखते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर बड़े प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दूसरों तक इसकी दावत पहुँचाइए, अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की भलाई आता। Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam.